Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो रास्ते में बातचीत हो रही थी, तो एक सज्जन बोल रहे थे कि हमने महाराज जी का सत्संग सुना, हमें भी मन होता है कि हम सन्यास ले लें। यहाँ सन्यास को आप सन्यास नहीं मानना, वो जो हवन करने की बात है उसका प्रतीक मान लेना, क्योंकि इसलिए सन्यासी लोग अग्नि का रंग पहनते हैं। जो अग्नि का रंग है वह पहनते हैं, अग्नि ज्ञानाग्नि का प्रतीक बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि और तो बात सब है, लेकिन क्या है कि जब हम आश्रम जाते हैं तो हम तो देखो गुजराती हैं, तो हमें मोटी रोटी नहीं चलती, और आश्रम में होती है मोटी रोटी। तो हमसे कहे कि बहन और तो सब ठीक है, लेकिन आश्रम में मोटी रोटी होती है, इसलिए हम घर छोड़ नहीं पा रहे। अने ओशिकु ओशिकु बने सरस जोई। अभी क्या है, माने आप मरने को जा रहे हैं, वो इस प्रकार से है कि जैसे एक सरदार जी थे, सरदार जी नहीं कोई भी ले लो, तो वो रेल की पटरी में लेटे हुए थे। तो वो पटरी का चेक करने वाला आया, उसने कहा कि उठो तुम यहाँ क्यों लेटे हुए, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि रेलगाड़ी आएगी तो मर जाओगे। तो उसने कहा कि मैं इसलिए तो लेटा हूं क्योंकि मुझे आत्महत्या करनी है। तो कहा कि कौन सी वाली गाड़ी से, कहा अभी जो 12 बजे आती है उससे। तो वो चेकर बोला कि वो तो लेट है, वो तो लेट हो गई है एक घंटे, वो अभी नहीं आएगी और तुम धूप में ऐसे पड़े रहोगे। तो वो बोला कि मुझे मालूम थी ये बात कि ये इंडियन रेलवे है, लेट होगी, इसलिए मैं अपना टिफिन साथ में लाया हूं, तब तक मैं टिफिन खा लेता हूं। तो क्या है कि ये मरने गए आत्महत्या करने, वैसी ही बात है कि कहा कि हम सब संपूर्ण दृश्य का होम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम बचा के रखेंगे, कुछ ना कुछ हम बचा के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अदिति बुद्धि नहीं है, अदिति बुद्धि नहीं है, अर्थात वो इसलिए अदिति को भी वही कहा था पूर्व के मंत्र में, अदिति बुद्धि अर्थात अभेद बुद्धि नहीं है, और दूसरा क्या बताया था, जो दीन नहीं होती है, जिसमें कार्पण्य नहीं आता है, जिसमें कृपणता नहीं आती है, तो ऐसी बुद्धि नहीं है। अदीना श्याम शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक अधीन होकर जिए, अर्थात निरपेक्ष जीवन, स्वतंत्र जीवन, संपूर्ण जीवन, ऐसा जीवन हम जिए। तो ऐसा जो निरपेक्ष जीवन, स्वतंत्र जीवन, संपूर्ण, ऐसी हमारी बुद्धि नहीं है, तो अदिति बुद्धि नहीं है, इसलिए हम उसको कैसे आएगी महाराज, हम संपूर्ण दृश्य का त्याग नहीं कर पाते हैं। त्यागात्म के न विचारेण, तो कहा कि वो विचार नहीं आ पाता है, कुछ ना कुछ हम अपने संग लिए रहते हैं, तो वो क्यों नहीं आता है, तो ऐसी बुद्धि नहीं है, तो कैसे आएगी? तो आप सत्संग करते रहिए, उसी से आ जाएगी, इस सत्संग से ये बुद्धि आएगी, क्योंकि ये ब्रह्म से इसका प्राकट्य है। तो ब्रह्म विद्या जब आपकी बुद्धि में बैठेगी तो आपकी बुद्धि में दृढ़ता आती है, आपकी बुद्धि एक निश्चय को प्राप्त होती है। तो निश्चय के पहले निर्णय होता है और निर्णय के बाद निश्चय होता है। बुद्धि में दो प्रकार से विधा चलती है, तो असत का जब आप त्याग करते जाते हैं तो आपकी सत बुद्धि परिपक्व होती है, अर्थात वह मजबूत होती है, सुभृत, वह पुष्ट होती है। तो सुभृत होती जाती है और पुष्ट होती जाती है। पूर्व में जो एक भी, पहले हम एक भी असद विचार को यदि छोड़ देते हैं, संकल्प को छोड़ देते हैं, भाव को छोड़ देते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं, कहीं से प्रारंभ करें, यदि आप विचार को नहीं छोड़ सकते, यदि आप भाव को नहीं छोड़ सकते, असत संकल्प को नहीं छोड़ सकते, तो असत कर्म को, क्रिया को छोड़िए, वहां से प्रारंभ कीजिए। क्योंकि बुद्धि का और कर्म का संबंध है। विज्ञानमय कोश में बुद्धि रहती है और विज्ञानमय कोश में क्या रहता है, मैं करता हूं। आप लोग ये सब जानते हैं। तो ऐसे कहीं से आप प्रारंभ कीजिए और कुछ करेंगे नहीं और कहेंगे हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो यह स्वभाव ही है। तो स्वभाव माने मन की माया, तो वो माया में आप फंसे रहेंगे। तो कहा कि ये यहाँ पर जो विशेष बात कही जा रही वो यह कही जा रही, अब ये ऐसी बुद्धि से मनुष्य जो है, और एतद् वै तत्, तो यहाँ एतद् वै तत् के द्वारा कह रहे हैं कि वो प्रश्नकर्ता जो तुम हो वह वही हो, जो प्रश्न जिसने किया था, हे नचिकेता वह तुम ही हो। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको बताई उसी को थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे कि आंख नाक जीभ आदि के द्वारा, जो इन प्रमाणों से जो हम जानते, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, और मन से, और बुद्धि से, और समाधि से, और उपासना से, सब ले लेना, ये सब क्या है, इन सब को हम प्रमाण मानते हैं। और इन प्रमाण से जो भी ज्ञात होता है, प्रमाण से ज्ञात, वही यदि वेदांत बताता है, क्योंकि वेदांत प्रमाण है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, वेद प्रमाण है, और वेद में जो पूर्व भाग है उपासना पर्यंत ले लीजिए, वह स्वर्ग आदि की बात बताते हैं, अर्थात धर्म के विभाग में आता है, अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्म दर्शनम, तो इसमें वह धर्म के विभाग में आ जाता है। और दूसरा जो ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड एक ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड है उसमें ब्रह्म तत्व की सिद्धि की जाती, संशन किया जाता, वहां शासन होता है, यहाँ संशन होता है, अर्थात वहां आदेश दिया जाता है ऐसे 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 करो, आज इससे क्या होगा, का अंतःकरण शुद्ध होगा, पुण्य की उत्पत्ति होगी, अब स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो ज्ञान कांड है वहां संशन किया जाता है, अर्थात आदेश नहीं उपदेश दिया जाता है, उप जो आपके उप समीप है, उपनिषद में भी यह उप लगा हुआ है, तो जो आपके उप समीप है, अत्यंत समीप है, उस तत्व का उपदेश दिया जाता है, तो उसको उपदेश कहते हैं। तो उपदेश के द्वारा जिस सत्य को दिखाया जाता है वह सत्य कैसा है, कहा सिद्ध वस्तु है, वह साधन साध्य नहीं है, वह सिद्ध वस्तु है। तो यदि इन सब प्रमाणों के द्वारा जो बताया जाता है वेदांत भी उसी को बताए, तो वेदांत अनुवादक हो जाएगा, वह प्रमाण नहीं कहलाएगा, ठीक है। अनुवादक माने जो किसी ने कहा उसी बात को हम कहते हैं, अंग्रेजी में लिखी गई उसी को हमने हिंदी में लिख दिया, तो क्या होंगे हम, अनुवादक होंगे, इतना तो आप समझते हैं, तो आप अनुवादक होंगे। और वेदांत क्या है, स्वतः प्रमाण है, अर्थात स्वयं प्रमाण है, तो और स्वयं प्रमाण है, उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रमाण से वह निरपेक्ष है। तो अन्य प्रमाण निरपेक्ष जो यह वेदांत स्वतः प्रमाण है, यदि अन्य प्रमाणों से जो ज्ञात होता है उसी को हम माने, तो उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठ जाएगा, प्रश्न उठ जाएगा। तो दूसरे किसी प्रकार से जो मालूम ना हो, हा? और दूसरे से, दूसरे किसी भी प्रमाण से जो कटे नहीं, अबाध्य हो, अकाट्य हो, वो उसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाणांतर से अज्ञात, अवेद्य, अनधिगत, अन्य प्रमाण से जो जाना नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अज्ञात, अवेद्य, अनधिगत, और प्रमाणांतर से जो बाधित न हो, ऐसे पदार्थ का जो बोध कराता है उसे बोलते हैं स्वतः प्रमाण। इसलिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसको आप सुन लेना ध्यान से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो उसको बोलते हैं, तो दुनिया के सभी संप्रदाय इसके इसके अंदर आ जाते हैं, इसी बात के अंदर आ जाते हैं। जो कहते हैं कि ज्ञान होगा, कहा कृपा से ज्ञान होगा तो बात बनेगी नहीं। कोई बोलते हैं समाधि से ज्ञान होगा, कोई बोलते हैं स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक करके ज्ञान होगा ना? तो इसमें क्या होगा, कोई कहते हैं अपनी युक्ति से ज्ञान होगा, जैसे अभी बताया था। तो कहा युक्ति से ज्ञान होगा, धर्म से उपासना से ज्ञान होगा, ऐसे सब बोलते हैं। तो स्वयं के विवेक से, युक्ति से, धर्मोपासना से इत्यादि ध्यान से, तो इस प्रकार से जो ज्ञान होगा ऐसे बोलते हैं। ऐसे भी बोलते हैं धर्मोपासना से एक अदृश्य की उत्पत्ति होगी और फिर उससे ज्ञान हो जाएगा। तो इससे किसी से भी ज्ञान नहीं हो सकता। आप आंख से ज्ञान मानते हैं तो आंख तो बड़ी छोटी सी है, किसी पूर्णता को दिखा नहीं सकती, आंख की अपनी सीमाएं हैं। इसी प्रकार सभी इंद्रियों की सीमाएं हैं, तो उनसे जो सीमित है उनसे ज्ञान नहीं होता। और जो प्रमाणांतर से होगा आंख नाक कान आदि से, वह अवेद्य कैसे होगा और उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अवेद्य और अनधिगत का ज्ञान कराता है वेदांत। तो इसलिए जो अनधिगत और अबाधित का ज्ञान कराता है, और स्मृति से व्यावृत्त ये भी जोड़ना चाहिए, स्मृति रूप नहीं, उसको बोलते हैं प्रमाण, उसको बोलते हैं स्वतः प्रमाण। तो वेदांत स्वतः प्रमाण है, अबाधित है, स्वतः सिद्ध वस्तु का बोध कराता है। और स्वतः सिद्ध क्या है, प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न। तो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न आपकी ब्रह्मता का, वह ब्रह्म तत्व ही है, इसका बोध कराता है वेदांत, प्रमाण से बोध कराता है। कैसे, कहा तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा यह बोध कराता है। तो यह बात जिज्ञासु की बुद्धि में बैठनी चाहिए, प्रमाण से ही ज्ञान होगा, अन्य प्रमाण से नहीं होगा, वेदांत प्रमाण से होगा। और इसके लिए उपदेष्टा गुरु चाहिए, तब वह गुरु की शरण में जाएगा। हमारे यहाँ वेदांतों में गुरुपसत्ति अर्थात गुरु की शरण में जाना एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, साधन सामग्री में इतना महत्वपूर्ण है कि कहा यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जैसी देवता में पराभक्ति है वैसी ही गुरु में होती है, तब वह वेदांत का अधिकारी बनता है। जब प्रमाण को उसने समझा तब वो वेदांत का अधिकारी बनता है। नहीं तो 24 अवतार की उपासना करो, 24 तीर्थंकरों की उपासना करो, 84 बुद्धों की उपासना करो, जो करना हो करो भाई, और चाहे कुरान पढ़ो चाहे पुराण पढ़ो, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमारी आत्मा की अद्वितीयता को, आत्मा की अपरिच्छिन्नता को, उसकी अविनाशिता को, उसकी ब्रह्मता को जो बताता है वही प्रमाण होता है, और उसी को वेदांत कहते हैं, चाहे किसी भी भाषा में बताए जाए। नहीं तो मतवादों में फंसेंगे, और कहा भ्रमर गुफा में जाएंगे तब ज्ञान होगा, अनाहत चक्र उसकी बात आ जाएगी, त्रिपुटी का ध्यान करने से ज्ञान होगा, अनाहत चक्र में जाने से उसका भेदन करने से ज्ञान होगा, और मूलाधार में जो कुंडलिनी बैठी रहती है उसको जागृत करने से ज्ञान होगा, उसको जब उठाएंगे तब ज्ञान होगा। ये सब क्यों बताते हैं, निषेध के लिए, अन्य प्रमाण का निषेध, उसकी महत्ता कटनी चाहिए, क्योंकि ये सब करेंगे तो समय कट जाएगा, और समय काटना है तो कोई बात नहीं, समय काट लो उसके लिए ठीक है, सब काट ही रहे हैं समय, तो समय काट लो कोई बात नहीं। तो और ऐसा होता भी है, कोई समझते हैं गुरु के पास जाने से होता है, तो गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दांव, बीच भंवर में डूब गए जो पत्थर की नाव। तो वो कुछ सिद्धि चमत्कार आदि में अनेक प्रकार हैं, आप देखते चलिए चारों ओर आंखें खोल के देखिए। उसमें फंसते ही फंसते हैं उस वहां पर ज्ञानाग्नि जो द्वैत को भस्म करती है, अनात्म प्रपंच को भस्म करती है, उसकी बात आती ही नहीं। और यदि आप ये समझ लेते हैं कि ज्ञानाग्नि, एक और बात, क्योंकि गुरु और शिष्य की बात लाए तो वहां भी द्वैत खड़ा रहेगा। तो जो ब्रह्म गुरु में है वही ब्रह्म शिष्य में भी है ना, तो दोनों में एक भी है, एक ही है, केवल वहां पर गुरुत्व की उपाधि है, यहाँ शिष्यत्व की उपाधि है, वहां वक्तृता की उपदेश की उपाधि है और यहाँ श्रोतृत्व की उपाधि है। तो उपाधि में भेद है किंतु चैतन्य एक ही है। कोई ऊपर बैठे, कोई समाज सनत कुमार आदि हैं, तो एक ऊपर बैठते हैं, तीन नीचे बैठते हैं, दूसरी बार दूसरा ऊपर बैठ जाता, तीन नीचे बैठते हैं। तो उपाधि में भेद होने पर भी चैतन्य एक ही है, ये बात समझ में आनी चाहिए। एक बार श्री महाराज जी ने हमसे पूछा कि गुरु शिष्य संबंध को तुम क्या समझती हो, तो हमने कहा कि महाराज जी गुरु शिष्य संबंध, जितनी बुद्धि थी उतना तो बोलेंगे तो हमने कहा बुद्धि को तो खिलाने के लिए गुरुदेव होते हैं ना, तो हमने कहा महाराज जी गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो जगत के समस्त संबंधों को काट देता है, तो ऐसा हमने कहा। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, गुरु और शिष्य संबंध नहीं होता, गुरु और शिष्य ऐक्य होता है, वहां संबंध नहीं होता। संबंधों हमेशा जिस भूमिका से आप बोलेंगे उस भूमिका से ऊपर की भूमिका महाराज जी देते थे, जिस भूमिका में भी आप बैठे हैं वहां से ऊपर की भूमिका वो बताते थे। हमने तो सोचा कि जैसे मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा होती है तो अन्य इच्छाओं को काटकर मोक्ष की इच्छा होती है, उसी प्रकार से अन्य संबंधों को काटकर गुरु शिष्य संबंध होता है। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, गुरु और शिष्य संबंध नहीं होता, वह ऐक्य बोध होता है, क्योंकि सद्गुरु की उनकी गुरुता चरितार्थ ही तब होगी। एक बार हमसे कहा कि तुम्हारे गुरुदेव की कोई निंदा करे तो तुम क्या कहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? कहा महाराज जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुम क्या करोगे? तो हमने कहा क्या करेंगे महाराज जी, वहां से उठ के चले जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें उस समय यह उत्तर देना है। देखो स्वयं प्रश्न पूछते हैं, स्वयं ब्रह्म का बोध कराते हैं, तो बोलते हैं तुम्हें उस समय यह उत्तर देना है कि तुमने बहुत थोड़े दोष गिनाए हैं, संसार की जितने भी गुण दोष हैं उसके अधिष्ठान तो हमारे गुरुदेव ही हैं, तुम्हें इस प्रकार बोलना है। देखो जो जितने भी गुण और दोष हैं तो तुम्हें तुम्हारी अपनी बुद्धि को तुम्हें गुण दोष में क्यों फंसाना है, गुण और दोष में तुम्हें क्यों फंसाना है, तुम्हें ऐसे उत्तर देना है। तो ऐक्य बोध होता है, तो ये ऐक्य बोध के लिए केवल वेदांत प्रमाण है, आपको ये बता रहे थे। तो गर्भिणी इव, जो गर्भिणी है तो वह श्रवण मनन निधिध्यासन से, ये वृत्ति गर्भिणी वृत्ति है, इसमें क्या बैठा है, ज्ञान बैठा है। तो ज्ञान बैठा है तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा संशय विपर्य को निवृत्त कर ले, तो श्रवण से तो प्रमाण होगा और मनन निधिध्यासन से वह संशय विपर्य को निवृत्त कर ले और इस प्रकार से ज्ञान का पोषण करे। तो महावाक्य जन्य जो साक्षात्कार को धारण करना, यह धारण करना पड़ता है, जैसे गर्भिणी को गर्भ धारण करना पड़ता है। तो और आप कहें कि हम समाधि से कर लेंगे तो वो तो समाधि तो मन में लगेगी, और बुद्धि की तीक्ष्णता से कर लेंगे तो वहां तो बुद्धि बनी रहेगी, और वो बुद्धि कैसे बताएगी कि आप ब्रह्म हैं, कैसे बताएगी? धर्मजन्य संस्कार वाली बुद्धि से भी नहीं होगा, समाधि जन्य संस्कार वाली बुद्धि से भी नहीं होगा, विवेक जन्य संस्कार वाली बुद्धि से भी नहीं होगा, पर तुम जो साक्षी अविनाशी परिपूर्ण अद्वैत हो उसको लखा देने वाला वेदांत प्रमाण चाहिए और उसी से होगा। इसलिए विशुद्ध वेदांत का श्रवण ये बहुत भाग्य से होता है, बहुत भाग्य से होता है। तो एतद् वैतद् के द्वारा ये बता दिया। अभी थोड़ा थोड़ा समय बाकी, हम लोग आगे के मंत्र में चल, क्योंकि पीछे तो चल रहे हैं ना, तो और भी बताते हैं। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु नात्येति कश्चन। एतद् वैतद् नौवां मंत्र है। तो कहा जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वह अस्त होता है, यतः च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, उस प्राणात्मा में तम देवाः सर्वे अर्पिता, संपूर्ण देवता अर्पित है, तदु नात्येति कश्चन, और उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। तो उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वह अनतिक्रमणीय है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात नेति नेति के द्वारा आप उसका निषेध नहीं कर सकते, वह निषेधावधि है। कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है तो वह किसको नकार रहा है? अपने आप को नकार रहा है। वो क्या कह रहा है? अहम नास्मि। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा बोलना कि मैं नहीं हूं, कोई बोले कि मैं नहीं हूं तो आप उसको क्या कहेंगे? तुम झूठ बोल रहे हो, कहेंगे ना, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खुद हो और बोल रहे हो कि मैं नहीं हूं। तो नहीं कश्चित प्रति आत्माहम अस्मीति, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि किसी को भी अब प्रतीति नहीं होती है कि मैं नहीं हूं। इसलिए तदु नात्येति कश्चन, कश्चित अपि, कभी भी वह अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भगवान भाष्यकार इसमें कहेंगे। तो वह अतिक्रमण नहीं कर पाता है। भगवान बुद्ध आए तो बुद्ध ने क्या समझा? उन्होंने क्या देखा? कहा शून्यम शून्यम, दुखम दुखम, क्षणिकम क्षणिकम, स्वलक्षणम स्वलक्षणम, ये उनका उपदेश है, उनका अनुभव है, बुद्ध का यह अनुभव है। तो उसमें भगवान भाष्यकार ने पूछा कि तुम्हारा जो यह शून्य है इसका साक्षी कौन है, इसको देखा किसने? शून्य अर्थात अभाव, तो इस शून्य को देखा किसने, इस अभाव को, इस शून्य को देखा किसने? और यदि उसका कोई साक्षी नहीं, उसको किसी ने देखा नहीं है, तो वह सिद्ध ही कैसे होगा? कैसे मान ले कि वहां शून्य रहता है? और यदि तुम तत्साक्षिकम निस्साक्षिकम वा, और यदि तुम कहते हो कि साक्षिक है, शून्यता भी एक अनुभव है, तो वह चैतन्य ही है, तो वहां चैतन्य का ही नाम अनुभव होता है, तो वहां तुम चैतन्य को, अनुभव को स्वीकृति ही दे रहे हो। इसलिए अनुभव की प्रणाली में स्वयं का निषेध हो नहीं सकता है, इसलिए यह अकाट्य है, अतिक्रमण इसका नहीं होता। ना अत्येति कश्चन, ईश्वर को या तो आप निसंकल्प कहिए अथवा ईश्वर को आप सत्य संकल्प कहिए, दो ही बात बनती है ईश्वर के साथ, या निसंकल्प कहिए या सत्य संकल्प कहिए। तो ये संकल्प क्या है महाराज? ये संकल्प माया है, संकल्प का ही नाम माया है। तो माया माया है, संकल्प है, माया रूपी संकल्प है, तो ईश्वर को हम कहते हैं सगुण, तब ईश्वर होता है सगुण। और माया नहीं है, संकल्प नहीं है, तो ईश्वर है निर्गुण, और निर्गुण अर्थात ब्रह्म, निर्गुण ईश्वर अर्थात निर्गुण निराकार जब ईश्वर होता है, माया उपाधि को छोड़ देता है, तो ब्रह्म। सरल सरल गणित है, कठिन नहीं है, और इसको आप समझ सकते हैं, आप में वह सामर्थ्य है। तो ईश्वर दोनों हालत में मस्त रहता है। कैसे मस्त रहता है? यदि ससंकल्प है, सत्य संकल्प है, तो उसके संकल्प से पूरी सृष्टि खड़ी है। कोई रोता है तो वह भी उसके संकल्प में, और कोई हंसता है तो वह भी उसके संकल्प में, तो वह रोने का भी आनंद लेता है, हंसने का भी आनंद लेता है, क्योंकि उसके उसी ने बनाया, उसके संकल्प से, ईश्वर के संकल्प से। ईशाना भूत भव्य से पहले एक मंत्र आ चुका है। और यदि कोई संकल्प नहीं है तो अपने स्वरूप में मस्त है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, तो उसका संकल्प भी सत्य होगा, ज्ञान होगा, आनंद स्वरूप होगा, अनंत होगा, तो वो रोता होता नहीं है, ईश्वर नहीं रोता। तो आप भले अपने मन के ईश्वर को बना के उसको रुला ले, हंसा ले, नचा ले, लेकिन वो नाचता हुआ भी अपने स्वरूप में रहता है, वह खेलता हुआ भी अपने स्वरूप में रहता है। तो वो सगुण बने कि निर्गुण बने, उसको कुछ बनना ही नहीं है, वह सगुणता और निर्गुणता प्रतीति मात्र। महाराज जी एक सुंदर बात सुनाते, बोलते भक्तों ने उसको सगुण बनाया, भक्तों ने सगुण बनाया, तो क्या हुआ, एक बार गुण आए बहुत सारे और भगवान के पास गए, सद्गुण भगवान के पास गए, दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वशक्तिमान है इत्यादि जो भी, तो गए तो महाराज भगवान ने कहा कि देखो हमें गुणों की आवश्यकता नहीं, तुम हमारे पास नहीं आओ, हम निर्गुण निराकार हैं। तो कहा हमारे ऊपर जो गुण थोपे हैं ये भक्तों ने थोपे हैं, ये उनकी महिमा है, उनकी महिमा से हम सगुण हुए हैं, इसलिए तुम जाओ हमारे भक्तों के पास। और भक्तों में जिन जो ध्येय का जिसका ध्यान करते हैं उपास्य के गुण आ जाते हैं। तो गुण गए भक्तों के पास, कहा कि तुम हमें अपना लो, तो भक्तों ने कहा ये तो सब भगवान के गुण है, हमारे थोड़ी है। तो गुण बिचारे जाए किसके पास, न भक्त के पास जा सके न भगवान के पास, दोनों ने निषेध कर दिया कि हमारे में गुण नहीं है, मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना, एक प्रभु के हाथ बिकाना। तो दोनों ने जब निषेध कर दिया तो गुण बिचारे बीच में रह गए, बीच में रह गए भक्त और भगवान के बीच में। और जब भक्त और भगवान बहुत निकट आए तो गुण बिचारे झुलस के समाप्त हो गए, ज्ञानाग्नि में झुलस के समाप्त हो गए। अब ये उदय अस्त की बात सूर्य की ये बहुत बढ़िया आपको कल सुनाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।